نحمده ونصلي على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ ٹائم کسی صاحب نے سورہ حشر کے بارے میں مجھ سے اور سورہ انعام کے بارے میں فرمایا تھا. سورہ انعام پر تو ہماری بات چیت ہوئی تھی چند ہفتے پہلے. سورہ حشر میں 3 رکوع ہیں اور 24 آیات. یہ سورہ مدنی ہے اور اس کا نزول کا وقت, اس پر علماء کی 2 رائے ہیں. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ, لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. اور یہ وہ موقع تھا جب غزوہ ندیر بپا ہوا ہے. اس سورہ کی ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے میکسیمم اسماء الحسنی ایک ہی ساتھ بیان ہوئے ہیں. سورہ حشر کی آخری آیات ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ نزول, اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. یہودی مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بستے تھے. مسلمانوں کے لیے انہوں نے خاصی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھیں. تو علماء جب اس کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودیوں کی ہسٹری ضرور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہودی مدینہ منورہ کے ارد گرد علاقوں میں آ کے بسے. مدینہ منورہ میں جو انصار مدینہ کہلائے ان کا ذکر, بلکہ یوں کہیے کہ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر اسی سورہ میں موجود ہے. رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی. تو مدینہ منورہ میں جو انصار کہلائے وہ 2 قبیلے تھے, بنی اوس اور بنی خزرج. اوریجنلی ان کا تعلق اصل میں بنی عزت سے تھا جس کا اوریجنل وطن یمن. جب یمن میں صد مارب والا سیلاب آیا جو اتنا شدید تھا کہ اس نے سخت چٹانوں کی بنی ہوئی دیوار, صد مارب جس کا نام تھا, اس کو گرا دیا, تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے اور آ کے پھر مدینہ منورہ میں بس گئے. عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جن سے مسلمان سخت تنگ آئے اور جنہوں نے سازشیں بے پناہ کی, یہ لوگ یہودی جب اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور یہ اس کا ذکر اور اقرار دونوں ہی بڑے کھل کر کرتے تھے. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سازشیں بھی انہی لوگوں نے کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے غزوہ بپا ہوا, اس کا ذکر ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے. یہ جو لوگ, میرا خیال ہے ہم لوگ صورتوں کو اس طرح سے پوچھتے ہیں, شاید اس کے پیچھے ایک کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یہ خیال رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پتا چلے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے دنیاوی فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں, تاکہ ہم وہ پڑھیں اور دنیاوی فائدے حاصل کر لیں. یہاں اکثر بیشتر بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ دنیا تو ملے گی ہی, لیکن علم اس طرح نہیں ملتا. अगर हम इल्म के हसूल की कोशिश कर लें और अगर हमें इल्म मिल जाए तो दुनिया आज खुद आने लगती है इंसान के पास। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हम बजाय इल्म की हसूल की कोशिश करने के हम दुनिया ही तलाश करते रहते हैं। और एक कानून फितरत है कि इंसान जिस चीज के पीछे भागता है वो उतनी ही उससे दूर भागती है, और जितना किसी चीज से बेपरवाह होता है वो चीज उसके पीछे भागने लगती है। तो हम दुनिया के हसूल के लिए जितनी ज्यादा एफर्ट करेंगे, जितना इसके पीछे हम भागेंगे, ये हमसे आगे भागती चली जाती है। और जितना हम इसको रद्द करते हैं, एक तरफ करें और इल्म के पीछे भागें, तो दुनिया उतनी ही उसके पीछे भागती है। मैंने यहां एक किस्सा एक किसी जमाने में बयान किया था कि एक साहब किसी बुजुर्ग के पास बैठते थे और बहुत से लोग भी थे। तो जो 25-30 साल के बाद ये साहब इल्म के उस मकाम पर पहुंचने लगे जहां इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, तो इनके मुर्शिद ने इनका फिनिशिंग टच इस तरह से दिया कि इनसे फरमाया कि आप शहर से दूर जो जंगल है उसमें चले जाएं और उसमें ऐसी जगह बैठें जहां लकड़हारे और वहां से गुजरने वाले लोग आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो ये जंगल के अंदर म्यान में जाके बैठ गया ये साहब, और जो कुछ इनके मुर्शिद ने इन्हें इबादत का कहा था वो करने शुरू कर दी। तो जितना भी ये सामान खाने पीने का अपने साथ ले जा सकते थे ये ले गए। तो बाहर कुछ दिन के बाद खत्म हो गया तो इन्हें भूख और प्यास भी तंग करने लगी, लेकिन लगे रहे ये अपने उस मुजाहिदे में। मुर्शिद ने इनसे कहा था कि जब आप 40 रोज पूरे करके वापस आ रहे होंगे तो जंगल से निकलते ही आपको एक आदमी मिलेगा जो आपसे ये पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। तो कितनी ही आपको लालच दे, आपने उससे दुनिया नहीं लेनी बल्कि एक बात पे इसरार करना है कि मुझे इल्म चाहिए। तो इन्होंने वो 40 दिन किसी न किसी तरह पूरे किए भूख प्यास के साथ। तो 41वें दिन जब जंगल से बाहर निकले तो वही हुआ कि जिस तरह मुर्शिद साहब ने कहा था। सामने से आता वो एक आदमी मिला और उसने पूछा कि तुम्हारी इबादत कबूल हो गई तो क्या इनाम चाहिए। तो इन्होंने कहा कि साहब मुझे इल्म चाहिए। तो उन साहब ने कहा कि अपने शक्ल देखो कि हड्डियों पे खाल मंडी है फाकों की वजह से, प्यास की वजह से तुम्हारी जुबान चमड़े के टुकड़े की तरह हो गई है, होंठ फटे हुए हैं तुम्हारे, तो इल्म से ना तुम्हारी प्यास बुझेगी ना भूख। तो तुम कोई ऐसी चीज ले लो जिससे तुम कुछ थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ। तो इन्होंने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक कहा कि नहीं, मुझे चाहिए इल्म ही चाहिए। थोड़ी सी बहस के बाद उन साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, तो जाओ तुम्हें तो मैंने ये इल्म दे दिया। तो वहां से चले। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब शाम हुई तो जो पहली आबादी रास्ते में आई तो इन्होंने वहां जाके कहा कि मुसाफिर हूं और मुझे रात गुजारना है। तो गांव वालों ने कहा कि आ जाए हम मेहमान खाने में। तो मेहमान खाने में इन्हें ठहरा दिया गया, खाना वगैरह इन्हें दिया। रात को ये अपनी इबादत में मसरूफ थे तो इन्हें यूं महसूस हुआ कि उस मेहमान खाने के बाहर एक भगदड़ मची है, लोग इधर उधर बड़ी तेजी से आ जा रहे हैं और साथ रोने पीटने की आवाजें आ रही हैं। दरवाजा खोला, पूछा कि क्या हुआ। तो लोगों ने बताया कि जी हमारे सरदार का अकलौता बेटा है जो बीमार था, वो आखिरी सांस ले रहा है। तो इन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और कहा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, आपके हर घर के बाहर इस शक्ल की जड़ी बूटी उगी हुई है, तो उस जड़ी बूटी के पत्ते ले लें, उनको हाथ से मसल के जो रस निकले वो बच्चे के मुंह में टिपका दें तो बच्चा ठीक हो जाएगा। उस आदमी जाके अपने सरदार से कहा कि वो जो मुसाफिर है उसने ये कहा है, तो चूंकि बच्चा तो जा ही रहा था तो सरदार ने ये सोचा कि ये तो हाथ से गया, इसको आजमाने में क्या हर्ज है, तो जड़ी बूटी उन्होंने वहां से पकड़ी, उसको हाथ से मसल के जो रस निकला बच्चे के मुंह में टपका दिया, तो सुबह तक बच्चे की हालत संभल गई। सरदार खुद शुक्रिया अदा करने आया है मेहमान खाने में इनके पास, और आके कहा कि आप मोहसिन हैं मेरे, मेरे बच्चे की जान आपकी वजह से बच गई है, तो अब तक तो आप मुसाफिर थे लेकिन अब आइंदा 3 दिन आप यहाँ रुकिए, आप मेरे मेहमान होंगे। तो ये साहब वहां रुक गए सरदार के मेहमान की हैसियत से, ये ठहरे हुए थे वहां, तो पता चला कि दुश्मन कबीले ने उन पर हमला कर दिया। तो एक ऐसा ही इन्हें महसूस हुआ आवाजों से कि जिस कबीले के मेहमान हैं वो कबीला कुछ दब रहा है दुश्मन कबीले से, तो उन्होंने मैसेज दिया कि सरदार से कहो कि ये चाल चले फतह हो जाएगी। तो सरदार ने वो चाल चली, फतह हो गई, वापस आए, तो रात को फतह का जश्न मना रहे थे वो, तो सरदार ने सबको एड्रेस करके कहा कि जो मुसाफिर यहाँ ठहरे हैं, जो हमारे मेहमान हैं, इनकी अक्ल और दानिश मुझसे कहीं ज्यादा है, और मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि इस कबीले का सरदार होने का हक इनका है, मेरा नहीं, तो मैं वॉलंटियरली दस्तबरदार हो रहा हूँ, आज से इस कबीले के सरदार ये होंगे। तो यूं ये सरदार बन गए। तो उस वक्त इन्हें एहसास हुआ कि वो जो मेरे मुर्शद ने ये कहा था कि जो कुछ मर्जी तुम्हें कोई दे तुमने लेना नहीं है, इल्म के लिए जिद करनी है, तो वो इल्म मिल जाने के बाद न सिर्फ ये कि ये साहिब इल्म हो गए बल्कि इन्हें दुनिया भी हासिल हो गई। तो हम गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया फिर हाथ नहीं आती, रब के पीछे भागे कि रब हासिल हो जाए। तो जब हम रब की दोस्ती के पीछे भागते हैं तो रब हमसे राजी होता है और इल्म अता फरमा देता है। जब इल्म मिलता है तो फिर दुनिया भी हासिल होती है, इज्जत भी हासिल होती है और आखिरत भी संवरती है। मेरे ख्याल में तो कुरान को हम अगर उसी तरह ले लें जो उसका मकसद है, जिसको किसी साहब ने एक जुमले में यूं बयान कर दिया था कि कुरान का रखना बाइस बरकत है, पढ़ना बाइस सवाब और अमल करना बाइस निजात। तो हम कुरान को पढ़ें इसलिए कि उसको हम समझ पाएं, और उसको समझना इसलिए चाहें कि हम उस पर अमल कर लें, और अमल करके हम निजात हासिल कर लें और आखिरत हमें मिल जाए। कुरान को समझने का आसान तरीन तरीका यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को देखें और उसकी इत्तबा कर लें, तो यूं कुरान समझ में भी आएगा और उस पर अमल भी हो जाएगा। इसलिए कि बहसियत मुसलमान के हमारा ईमान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कुरान की अमली तफसीर है। किसी साहब ने पूछा है कि रब की कुर्बत में आंसुओं का बहुत बहना, रूहानियत में इन आंसुओं पे कुछ इरशाद फरमा दें। भाई अल्लाह के जिक्र पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर अगर इंसान के आंसू अज खुद बह निकले, वह आंसू जो रब के जिक्र पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर अज खुद बहने लगे, वो बहुत मुबारक आंसू हैं। वो एक बात का सबूत है कि वो शख्स जिस पर रिकत बहुत तारी हो जाए, कि उसके सीने में मोहब्बत करने वाला दिल है और उस दिल में रब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी है, तो इसलिए वो आंसू बहते हैं। रूहानियत में ये आंसू बहुत मुबारक हैं, लेकिन याद रखिए कि फकीर मुसीबत में आंसू नहीं बहाता, इसलिए कि मुसीबत पर बहने वाले आंसू वो मुबारक नहीं है। इन्हीं साहब ने चीज और फरमाई है कि मैंने कुछ लेक्चर आपके समाप्त किए, मेरी नाकिस अकल जो कुछ समझ पाई कि आपने कहा कि रूहानियत की राह की सबसे पहली स्टेज ये कि इंसान जन्नात को देखने लगता है, तो क्या ये लाजमी शर्त है हर शख्स के लिए जो भी इस राह पर चलेगा? भाई इस पहली स्टेज पर पहुंचने के लिए एक पहली शर्त भी है, हम अगर उस पर ज्यादा जोर दें तो शायद मसले हल हो जाएं। वो पहली शर्त ये है कि हम सुन्नत के ऐन मुताबिक अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ, ज्यादती, जबर, उसको हम खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लें। हम दूसरों के लिए बड़ी खुशी से तकलीफ और दुख उठा लें। ज्यादा जोर उस पे दीजिए। हमारे मामलात इसीलिए नहीं संवरते कि हम जब ये देखते हैं कि जो पेड़ हमने लगाया था उसके फल में कीड़ा पैदा हो गया, बजाय इसके कि हम दरख्त की जड़ों में पेस्टिसाइड इंजेक्ट कर दें, हम फलों, टहनियों और पत्तों को झाड़ने लगते हैं। नतीजा यह है कि वो कीड़ा बदस्तूर अपनी जगह रहता है और अगले साल फिर जो फल आता है वो कीड़े वाला होता है। लेकिन अगर हम शुरू ही में दरख्त के जड़ों में पेस्टिसाइड इंजेक्ट कर दें तो अगले साल वो ये फल जो पैदा होगा उसमें कीड़ा नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हम इस तरफ को जाएं कि जी मैं जब MA करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, हम इस पे तवज्जो दे दें कि भाई मैंने क्लास 1 में दाखिल होना है, उसके लिए मुझे क्या करना है ताकि मैं MA कर पाऊं। तो हम बुनियादी चीजों को छोड़कर आगे भाग जाते हैं। जब मसाइल को हल करने की बारी आती है तो हम उसमें भी यही रवैये रखते हैं कि जो कुछ आज हमने देखा है हम उसको ठीक कर लें। हम ये नहीं देखते कि ये जो आज मसला सामने आया ये बुनियादी तौर पर पैदा कहां से हुआ था। तो जहां से वो पैदा हुआ था अगर उन वजूहात को हम ठीक कर लें तो आज पैदा होने वाला मसला भी अस खुद ठीक हो जाएगा और आइंदा वो मसला पैदा भी नहीं होगा। तो आप जड़ों पे नजर रखिए, फल पर नजर ना रखिए। तो इसकी फिक्र ना कीजिए कि ये स्टेज हर एक पे आएगी, तो अगर आएगी तो इंसान कैसे बिहेव करेगा, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या इंसान सोचने लगेगा। अगर हम इसको यूं ले लें कि मैं इस स्टेज पर पहुंच के खुद देखूंगा कि होता क्या है, तो उस स्टेज पर पहुंचने की लगन शुरू हो जाएगी। तो वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए, यह मत देखिए कि वहां जब पहुंचेगा तो क्या है, वहां पहले पहुंच जाइए, यही सही रास्ता है। ऐसी चीजें जो आम आदमी की नजर से पोशीदा हैं, जब इंसान रूहानियत की एक स्टेज पे, इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं, जब एक स्टेज पे पहुंचता है तो वो पोशीदा चीजें दिखाई देने लगती हैं, गरचे वो भी सब नहीं होती। सारे कुदरत तो बहुत वसी है, उसका एक बहुत ही हकीर सा हिस्सा इंसान की निगाह में आता है। तो ये जिन्नात भी ऐसी चीज है जो पोशीदा है इंसानी आंख से, तो ये भी जाहिर होने लगते हैं। लेकिन हम जोर इस पे दें कि हम इस राह पे चलें तो, और उस राह पे चलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर ले आए हम, कम से कम फर्ज इबादत पूरी की पूरी अदा कर दें, और तीसरी चीज ये कि नेकी की राह पर चलने के लिए। इन तीनों चीजों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी रूह की परवाज शुरू हो जाएगी, और जितना इस पे अमल करते चले जाएंगे वो परवाज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार मुलाकात होती है आपसे। अस्सलामु अलैकुम।